ओम शांति। बाबा की बगिया की रूहानी गुलाब भ्राता मोहन भाई सिंगल जी हमारे बीच में आए हैं, जिनका हम एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप 1962 में विद्यार्थी काल से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। आपने लखनऊ विद्यालय से 1963 में मास्टर डिग्री प्राप्त किया, 1967 में एमटेक की मास्टर डिग्री प्राप्त की। आप इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद ओएनजीसी में ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे। भारत के लगभग 20 शहरों में आपने स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी का भी निर्माण किया है। भारत में आसाम, गुजरात, बिहार आदि में अनेक सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त भी बने हैं। आपने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य किया है। भारत केंद्र सरकार ने मानव संसाधन मंत्री जी के हाथों पर्यावरण श्री की उपाधि आपको प्राप्त हुई है। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स डेवलप किया, अनेक अभियानों का संचालन किया। आपने यूएसए तथा यूके में भी इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं। आपको 2013 में ग्रीन आइडल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साइंटिस्ट व इंजीनियरिंग विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं, हमारे ज्ञान सरोवर एकेडमी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। विंग ऑफिस में 18 विंग की गतिविधियों को सुचारू रूप से आप देखते हैं। आपको साकार मम्मा बाबा की पालना लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। साकार बाबा जब अव्यक्त हुए उस दिन साकार ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुनाई गई अंतिम मुरली क्लास के सौभाग्यशाली भाई जी भाई बहनों में एक आप भी थे, तो वह अनुभव हम सुनेंगे एवं बाबा के अंतिम वरदानी बोल निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी भव को हम स्वरूप में कैसे लाए वह हम सभी आपके श्री मुख से सुनेंगे। आदरणीय भ्राता से मोहन भाई सिंगल जी ओम शांति।
ओम शांति। एक बार हम सब उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा यज्ञ के प्रारंभ में ओम की ध्वनि बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। शांति की ध्वनि है जो वास्तव में जो बाबा के तीन अंतिम शब्द कौन कौन से बता रहे थे बहन जी? निराकारी निरहंकार निर्विकारी, ये तीनों शब्दों का वास्तव में समावेश इसके अंदर ही हो जाता है। मुझे पता चला अभी कि ये मेरठ का ग्रुप है, मेरठ का ही है ना मेनली, भले मिक्स होते हैं आसपास के और भी होते हैं। तो मेरठ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्रांति, पहली क्रांति आई थिंक 1857, सही है ना, क्रांति की नींव, जैसे कि स्वतंत्रता की, वो ही क्रांति प्रथम वहीं से शुरू हुई। आप देखेंगे कि संगम युग में हर जगह जहां पर भी ब्राह्मणों ने जो कार्य किया है वहीं पर ही अधिकतर भक्ति मार्ग की या लौकिक बातों की वो वहां पर मुख्य रूप से नींव पड़ी है। मैं यहीं पर ही देख लो, यहाँ पर ही आते हैं। हमें याद है जब हम लोग शुरू में आते थे 62 के बाद ज्ञान में आए, तो बाबा कहते थे बच्चे अजमेर का देखा पुष्कर या स्वर्ग वो देखा, यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर वो देखा, जाकर देखो तुम्हारी कौन सी मूर्ति है, यादगार है। जो जो भी यादगारें हैं ब्राह्मणों की ज्यादातर करके हुई हैं, जिन जिन शहरों में हुई हैं उस शहर की विशेष करके जो वहाँ की प्रसिद्धि है, वहाँ उसका संगम युग से कुछ न कुछ रिलेशन जरूर रहा है। तो आप कौन सी क्रांति लाएंगे मेरठ वाले जब यहाँ आएंगे, कौन सी क्रांति करेंगे? आध्यात्मिक क्रांति तो होगी क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता की, तो एक तो यही है कि सच्ची स्वतंत्रता की क्रांति जो है रिजल्ट, बाबा जो भी आता था और समय प्रति समय जो ग्रुप आते हैं बाबा हर एक को कितना महानता तक ले जाते हैं, नंबर वन आना है इस ग्रुप को। और मेरठ वाले भी किसी सच्ची स्वतंत्रता की क्रांति की, कोई अभी भट्टी में आप बैठे हुए हो तो यहाँ पर विचार सागर मंथन भी करेंगे, बाबा की बातें सुनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी। तो उन सब के आधार पर सोचना कि ऐसी हम कौन सी चीज निकालें सच्ची क्रांति की, उसकी सब आत्माएं जो भी ब्राह्मण हैं वो स्वतंत्र हो जाए। आज भी मुरली में था ना, मुरली का मुख्य थीम क्या था आज? निर्बंधन था ना, तो बंधन ही सबसे बड़ी परतंत्रता है और बंधन से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो जो बाबा के आज के शब्द हैं वो हमें बाबा के सम्मुख ही सुनने का सौभाग्य मिला। वैसे तो बाबा मम्मा की पालना बहुत ली है और अभी अभी मम्मा का मंथ एंड हुआ है, तो मैं इस रेफरेंस में एक बात और विशेष बताना चाहता हूँ मम्मा की, कि मम्मा याद होगा ना किस दिन शरीर छोड़ा था मम्मा ने, और वर्ष 60। देखो 60 वर्ष हो गए मम्मा को शरीर छोड़े हुए, हाँ, तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा शरीर छोड़ के अंत में तो सुना ही होगा, मम्मा ने अपने हाथ से बच्चों को अंगूर दिए आदि आदि। तो शरीर छोड़ के मम्मा जब पहुंची ऊपर सूक्ष्म वतन में, तो वहां पर अव्यक्त बाप दादा, हाँ, साकार में तो बाबा यहीं थे, बाबा तो 69 तक हम लोगों के साथ थे, तो उस समय बाबा साथ में थे। तो ऊपर अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा और शिव बाबा, अव्यक्त बाप दादा ने मम्मा से पूछा, मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा पहले कुछ थोड़ा सोचा और फिर मम्मा ने कहा, नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा, जाओ मम्मा, अभी नीचे जाओ, हिस्ट्री हॉल में आपका शरीर वहाँ पर रखा है, सभी योग कर रहे हैं, बाबा भी योग के द्वारा आपका आवाहन कर रहे हैं, सभी बच्चे भी। क्यों आवाहन कर रहे हैं? क्योंकि उस समय तक ये ही ज्ञान में हमारी मान्यता थी कि हम सब को इकट्ठे, बाबा मम्मा और हम सब बच्चे, हम सबको इकट्ठे ही जाना है, साथ में ही जाएंगे। और अभी मम्मा गई नहीं है, ये कोई खेल दिख, बाबा ड्रामे का खेल दिखा रहा है, जो लग रहा है कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में शरीर छोड़ा नहीं है। और ये हर एक ये सोच करके ही बाबा भी और सब बच्चे वहाँ पर मम्मा का आवाहन भी कर रहे थे। मम्मा नीचे गई जैसा बाबा ने भेजा, नीचे जाके काफी देर तक मम्मा नीचे रही, सुना है ये बात? तो मम्मा नीचे रहे और उसके बाद काफी देर के बाद जब मम्मा ऊपर आए, फिर बाबा ने पूछा कि मम्मा आप अनुभव करके आए कर्मातीत स्थिति का? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने अभी भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबा मैं गई नीचे, मैंने बहुत प्रयास किया कि शरीर में प्रवेश कर सकूं, शरीर तो ठंडा पड़ चुका था, कोई भी उसमें चुरपुर नहीं हुई, हलचल नहीं हुई, तो मैंने काफी प्रयास किया लेकिन मैं प्रवेश नहीं कर सकी और फिर मैं वापस आ गई ऐसे। तो बाबा ने कहा कि देखो मम्मा, हम अभी आप ऊपर तो सूक्ष्म वतन या और ऊपर परम धाम में अपनी सीट पर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परम धाम में जब आत्मा अपनी सीट से आई, उस समय प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज थी सभी की। हम सभी जितनी भी आत्माएं परम धाम से, जो बाबा ने साक्षात्कार भी किया था कि ऊपर से स्टार जैसे आते हैं, नीचे कोई राजकुमार बन जाते हैं, कोई राजकुमारी बन जाते हैं, तो इस रीति से नीचे जब आए वो हमारी हाईएस्ट स्टेज थी, हम सब जानते हैं। तो वो स्टेज जब तक यहाँ पर हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर लेते प्योरिटी की वो हाईएस्ट स्टेज, तब तक हम अपनी सीट पर जाकर विराजमान नहीं हो सकते परम धाम में। तो इसीलिए यहाँ पर हर बच्चे को जब भी उसका अंत समय आएगा, तब हाईएस्ट स्टेज उसको अपनी प्राप्त करनी पड़ेगी और वो परम धाम में जा करके अपनी सीट पर विराजमान होगा। तो अभी मम्मा आप जाओ और नया गर्भ आपका प्रतीक्षा कर रहा है, नए माता पिता, और वहाँ जाके आपका जो बचा हुआ पुरुषार्थ है कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने का, वो पुरुषार्थ करो, और फिर उसके बाद जब शरीर छोड़ोगे और तब अपनी स्टेज पर जा करके वहाँ पर परमधाम में अपनी सीट पर विराजमान होगे। और यही बात सब बच्चों को भी कहना, जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं, कि इसी शरीर में ही उन्हें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है। जितना ये कभी नहीं सोचना कि कोई चीज का अभाव है, मानो तन मेरा बीमार है, अच्छा है छूटे, नया शरीर मिलेगा, नया पुरुषार्थ करेंगे, या मन बहुत ही व्यथित है, चंचल है, मन स्थिर नहीं होता है, धन की कमी है, संकल्प आता है कईयों को, अगर हमारे पास धन बहुत होता तो हम और भी धन से सेवा कर सकते थे, ऊंच पद आदि आदि, तो वास्तव में बेस्ट शरीर आपको यहाँ पर मिला हुआ है। बाबा ने आपको यहाँ पर ये बेस्ट शरीर मिला है, जिसके द्वारा आपको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए ये लक्ष्य कभी भी नहीं रखना कि क्या करूँ, ये कमी है, ये समस्या है, संबंधों में कटुता है, परिवार वाले नहीं चलते हैं, आदि आदि कुछ भी समस्या है, नहीं, मुझे इस शरीर से कर्मातीत बनना ही है। तो ये शरीर मम्मा, ये लक्ष्य दे करके गए थे जो बाबा ने बताया और मम्मा ने संदेश में ये आके बताया। अब आते हैं ब्रह्मा बाबा की बात पर। तो ब्रह्मा बाबा के अंतिम दिन, सबने सुना है, बाबा ने जैसे सभी अंतिम समय के लिए हमें कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना है, छोड़ना नहीं है। अक्सर करके हम सबका संस्कार होता है, चलो कल कर लेंगे, ये परसों कर लेंगे, ये पुरुषार्थ बाद में कर लेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि जो काम अधूरा रह जाता है, एक तो वो काम अंत समय, वो जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो अधूरे काम याद आते हैं, ये करना था, ये नहीं कर सका मैं, इसका संकल्प था मुझे, बच्ची की समर्पित कराना था, सेंटर के लिए मकान बना के देना था, जो कोई भी अच्छे शुभ संकल्प होते हैं वो तुरंत पूरा कर ले। और इस कारण से बाबा कहते हैं ये संकल्प जो है अंतिम समय, ब्रह्मा बाबा को भी कुछ काम अधूरे याद थे, अधूरे, और ये अधूरा काम बाबा के स्थूल तो सबको मालूम है, पत्र, तब तो पत्रों का जमाना था, ईमेल वगैरह कुछ नहीं, तो बाबा ने पत्रों के उत्तर बाकी थे तो यीशु दादी को कहकर सारे पत्रों के उत्तर दिलवाए कि कोई भी बच्चा रह ना जाए जिसने पत्र लिखा हो और उसका उत्तर बाकी हो। दूसरा, नक्की लेक का म्यूजियम जहाँ है वो मकान में प्रदर्शनी लगाई हुई थी और सबका विचार था वो मकान परमानेंट ले लिया जाए, वहाँ से लोग आते हैं जो सनसेट से भीड़ आती है, सब वहाँ संदेश लेके जाएंगे। कई दिनों से पेंडिंग पड़ा था, लास्ट डे बाबा ने उस फाइल पर भी साइन किया। तीसरा, बाबा ने ये लक्ष्य रखा कि इस शरीर से, क्योंकि एज भी बाबा की 93 थी, कई प्रॉब्लम आती थी, विशेष करके खांसी की समस्या, मुरली चलाते हुए भी बाबा को कई बार होता था, तो बाबा ने ये लक्ष्य रखा था कि शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर मुझे कर्म योग के द्वारा विजय दिलानी है, योग बल के द्वारा विजय दिलानी है। तो खांसी का हर एक का कोई ना कोई कर्म भोग तो है ही है, जो अंतिम समय तक हमारे साथ चलेगा जब तक हम ये शरीर छोड़ेंगे। तो इसीलिए ये लक्ष्य रखें कि मुझे इस शरीर में ही संपूर्ण बनना है, योग बल इतना कमाना है, जो बाबा कहते हैं योग से आयु भी बढ़ती है, योग से समस्याओं का भी निवारण होता है, सफलता मिलती है आदि आदि। तो इसीलिए योग बल मुझे ज्यादा करना है और ज्ञान के द्वारा चक्रवर्ती राजा बनेंगे, योग के द्वारा ये सब समस्याएं खत्म होंगी। इसीलिए योग बल के द्वारा जितना जितना हम संपूर्ण बनते जाएंगे। ये तीसरा, तो इसीलिए बाबा ने उस दिन, रोज मुरली होती है रात को 9:15 के करीब होती थी जब साकार में बाबा थे, अभी भी तभी होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा आज मुरली बाबा जल्दी चलाएगा, सब 7:30 बजे तक लगभग बच्चे भोजन करके आ जाए, भोजन अवश्य करें, क्योंकि बाबा को मालूम था आज ये मेरा अंतिम दिन है, बच्चों से अंतिम मुलाकात है, अगर पहले भोजन नहीं किया बाद में तो क्लास के बाद बस बाबा जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद तो कोई भोजन कर नहीं पाएगा, और जब तक संस्कार नहीं हो जाता तब तक वैसे भी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है। तो इस रीति से बाबा ने भी जो अंतिम शब्द ये उच्चारे, इसका बहुत बहुत महत्व है। और अंतिम बाबा ने मुरली जो चलाई, तो हिस्ट्री हॉल में आप देखेंगे ऐसे ही 3 संदली पड़ी रहती थी, एक संदली पर इधर बाबा बैठते थे, इधर मम्मा बैठते थे, बीच की संदली खाली रहती थी। जो पार्टी वाले आते थे वो अपना अनुभव सुनाते थे, और जो पार्टी वाले होते थे वो पार्टी वाले और जाते वक्त कि मैं क्या लक्ष्य लेकर जा रहा हूँ पुरुषार्थ का, वो बैठ के सुनाते थे। और साथ में गुरुवार के दिन तो भोग लगता था, और यहाँ पर आती थी संदेशी, बैठती थी, तो गुरुवार को संदेशी आती थी। तो देखो बाबा तो विश्व महाराजन बनने वाला नंबर वन कृष्ण की आत्मा, तो इस कारण से जो विश्व महाराजन बनने वाले होंगे, हम सभी बनने वाले हैं नंबर वन, लेकिन बाबा बनने वाला था तो अंतिम दिन ही सही, जिस समय शरीर हम छोड़े हैं उस समय तक योग बल के द्वारा हमारे कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। बाबा को दिन में भी खांसी थी और तकलीफ थी, सुबह मुरली नहीं चलाई थी बाबा ने, योग कराया था, तो इसीलिए उस दिन रात्रि को बाबा ने जब ये क्लास कराई, तो पहली बात तो बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। हमेशा खांसी आती थी, कई बार कफ आता था तो तकलीफ होती थी बाबा को, आंखें भी गीली हो जाती थी इतनी तकलीफ, और हम लोग भी समझते थे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है शायद, लेकिन बाबा ने क्या युक्ति रची थी। तो ये भी बाबा ने सैंपल बताया है, अपने लिए हमें ही युक्ति रचनी है कि कोई भी परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति, उससे हम हार न खाएं, उस पर हम विजय प्राप्त कर लें। तो बाबा को ये खांसी की परिस्थिति आती थी तो बाबा क्या करता था, खांसते हुए बस बाबा के साइड में ही श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का भी फोटो था, बस बाबा कहता देखो बच्चे अभी तो ये शरीर भी तमो प्रधान है और आत्मा भी इतने जन्म लेते लेते तमोगुणी हो गई है, शरीर तो है ही विकारों की उत्पत्ति, तो इस कारण से बस बाबा देख करके कृष्ण का ओ कल बाबा ऐसा कृष्ण विष्णु कृष्ण बनेगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई खांसी नहीं होगी, बस नया जन्म होगा, हम सब बहुत आनंद में होंगे। और बस बाबा उस समय की याद करता था, यहाँ तो खांसी आ रही है प्रैक्टिकल में, लेकिन उसकी कि सतयुग में जाके मैं विष्णु कृष्ण बनूंगा, छोटा कृष्ण, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, और ऐसी खांसी रूपी परिस्थिति में भी बाबा करके वो बच्चे ओ कल बाबा ऐसा बनेगा विष्णु बनेगा। बस बच्चों को सदा खुश ही रहना है, कोई भी परिस्थिति आए परिस्थिति से हार नहीं खानी है। तो ये भाव बाबा ने अंतिम दिन भी जब मुरली चला के हैं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यद्यपि मैं बताया जैसे कि इंजीनियरिंग पास करके 67 में मैंने IIT ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, और वही बाद में IIT हो गया, तो वहाँ से पास करके मेरी पोस्टिंग बाबा की इच्छा अनुसार ही आसाम में ली। तो यद्यपि मैं दूसरी पोस्टिंग चाहता था, क्योंकि आसाम में कोई सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला नहीं, कोई क्लास नहीं चलती थी, पूरी सातों स्टेट में, ये मैं 1967 की बात बता रहा हूँ जब मैं पास करके बाबा के पास आया था। तो मेरा हैदराबाद और दिल्ली में भी हुआ थी पोस्टिंग, हैदराबाद में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ हुई, और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मौसम विज्ञान जो होता है वहाँ पर, दोनों जगह जॉब मिला था। मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाऊँ क्योंकि फिक्स्ड टाइम होगा, ज्ञान योग बहुत अच्छा होगा और उस रीति से, लेकिन बाबा ने कहा कि जब ये तीसरी ONGC में हुई थी तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे तुम्हें ये ONGC वाला ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा बाबा वहाँ तो आसाम में पोस्टिंग हो रही है, वहाँ तो एक भी सेंटर नहीं है, इतनी सातों आसाम अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और अगरतला आदि आदि त्रिपुरा, ये सब जितनी सातों स्टेट हैं कहीं पर भी एक भी सेंटर नहीं, एक भाई बहन नहीं, तो वहाँ तो मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ जाऊँगा। कि नहीं बच्चे तुम्हें जाना है, और मैंने कहा बाबा कैसे पालना होगी हमारी, कि नहीं नहीं पालना तो बाबा ने इतने साल में कर दी, 4-5 साल में, अब तुम्हें वहाँ जाके पालना देनी है। बाबा के बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो देखो बाबा कितना दूरदर्शी था, हम बच्चे अपना ही स्वार्थ सोचते हैं, मेरे लिए क्या कल्याण है, लेकिन बाबा विश्व का, कि पूरे विश्व का परिवर्तन करना है, और इसीलिए बाबा कराएगा। और वास्तव में कई बार हम महसूस करते थे हमें उतनी समझाने की वो नहीं है, लेकिन ये भी महसूस होता था, बाबा कहता है ना कि कई बार मैं देखता हूँ समझने वाले बड़े अच्छे आए हैं, मारवाड़ी माताएं ज्यादातर करके आसाम में, मारवाड़ी बिजनेस सारा मारवाड़ियों के पास है, तो मारवाड़ी माताएं बहुत आते थे, हम तो चित्र फैला के बैठ जाते थे, शिव का मंदिर शिव सागर जगह थी, वहां पर पोस्टिंग हुई, और उस पोस्टिंग में मंदिर में चित्र फैला के भी बैठ जाते थे। और कई बार क्या होता था कि शिव सागर लेक बहुत बड़ी थी, तो लेक में भी शाम के समय लेक के पास लोग घूमने आते थे, और सुबह के समय शिव सागर टेम्पल बहुत बड़ा है वहाँ पर। लेकिन ब्यूटी ये थी कि हमें कुछ अनुभव भी नहीं था सेवा का, बस पास करके सीधा ही वहाँ पर पोस्टिंग हुई चले गए। लेकिन करण करावन आर कैसे बाबा है, बाबा अपना काम कराता है। कैसे कराता है कि कई बस वहाँ पर मारवाड़ी माता है, उन्होंने अपना मंदिर बोला कि इस मंदिर में आके आप क्लास कराओ। क्लास कराते थे, छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी कई 4-5, वो ध्यान में चले जाते थे साक्षात्कार, जैसे यज्ञ के आदि में साक्षात्कार के द्वारा बहुत पार्ट खुले। और वहाँ के तो भाई लोग तो आते नहीं थे, ज्यादातर बहनें ही आती थी, लेकिन ये देख के कि उन्हीं की बच्ची उन्हीं की पोती वगैरह वो ध्यान में है साक्षात्कार में है, आके बता रहे हैं हमने कृष्ण के साथ रास करा खेला आदि आदि, तो बाबा किस प्रकार से उनकी बुद्धि को पकड़ता है ये हमने वहाँ पर देखा। और बाबा ने अनेक प्रकार के ये ऐसे अनुभव, और बस थोड़े समय में ही बहुत क्लास वगैरह होने लगी। और जब बाबा ने भेजा था तो बाबा उस समय बाबा ने कहा था कि बच्चे अब जाओ, क्योंकि हमारे दिल थोड़ा हो रहा था आसाम इतनी दूर जा रहे हैं कोई सेंटर नहीं। बाबा ने कहा बच्चे बाबा समय पर तुम्हें बुला लेगा, समय पर। तो ठीक है, हम तो भूल भी गए इस बात को और वहाँ चले गए। और बाबा ने ये सेवाएं बहुत करवाई, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर देहरादून से हम गए थे क्योंकि वहाँ ज्वाइन किया था, तो देहरादून से गए थे तो वहाँ पर जब शिव सागर में आसाम में वहाँ जा कर के ये बाबा ने कहा था समय पर बाबा बुला लेगा, तो देहरादून से मैसेज आया कि यहाँ म्यूजियम बनाना है, आप कुछ दिन छुट्टी लेके आ जाओ तो थोड़ा इसमें गाइड कर दो। तो हमने बाबा को लिखा, तब तो पत्र ही होते थे, तो बाबा ने कहा बच्चे ठीक है वहाँ जाना, लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ प्लेन से आओ। तो ये जनवरी की बात है, जनवरी 1969 की। और बाबा ने बुलाया, हमने जल्दी जैसा बाबा ने कहा वहाँ से प्लेन से गए, पहले कलकत्ता फिर दिल्ली और फिर दिल्ली से अपने लौकिक पिताजी के साथ मधुबन 17 जनवरी को पहुंच गए। 17 जनवरी 1969 सुबह के वक्त। तो भाव क्या है कि बाबा ने तो भेजा समय पर बुला लेगा, इससे बढ़िया समय कोई हो सकता था क्या? 18 जनवरी को बाबा का मुरली सुनने का भी सम्मुख सौभाग्य मिला और कई वंडरफुल बातें अनुभव करने की भी मिली। बाबा हमेशा जब भी मिलते थे 62 से 69 तक, बहुत बार बाबा से मिले होंगे, बाबा के पास जाते थे दृष्टि लेते थे और बाबा कहते थे अच्छा बच्चे कुछ पूछने आए हो, हम बताते थे, कोई प्रश्न होता था ऐसा कर लो ऐसा बाबा को बताते थे। लेकिन इन अंतिम दो दिनों में क्या अनुभव हुआ, बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा को ये सेवा का समाचार सुनाएंगे, ये पुरुषार्थ की बात सुनाएंगे, ऐसे करके दृष्टि लेते थे। और बाबा कहते थे बच्चे मन की बात ही बाबा पढ़ लेते थे, ये पूछने आए हो प्रश्न भी बता देते थे, क्या पूछने आए हैं, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। देखो कितनी वंडरफुल बात, ये है संपूर्णता की एक परख, कर्मातीत अवस्था बाबा की। मन जीते जगत जीत, मन हमारे मन में क्या चल रहा है, हमने एक अक्षर भी नहीं बोला, बाबा ने दृष्टि दी वो बात भी बता दी और उसका समाधान भी दे दिया। एक बार दो बार लगभग 6 बार 17 और 18 जनवरी को ये हुआ, ये वंडरफुल बात है ना, ये कर्मातीत अवस्था बाबा की, और ये हम सबको भी बनानी है, अंत में हमारी भी यही अवस्था होगी, स्थिति होगी कि अंत में लोग आएंगे हमारे सामने, बहुत इच्छाएं लेके आएंगे, लेकिन समय नहीं होगा उनके बोलने का या हमें सुनने का, हम भी बस दृष्टि मात्र देंगे और उनके मन की बात को परख लेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो एक तो ये बात बाबा की कर्मातीत अवस्था का देखिए, और ये बात का कनेक्शन इन तीनों से ही है जो बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा। मनसा में कौन सी स्थिति? निराकारी। वाचा में निरअहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। ये तीनों अवस्थाओं का कनेक्शन कर्मातीत अवस्था से जो बाबा की प्रैक्टिकल में देखी। पहली बात तो मन की बात जान ली बाबा ने, निराकारी स्थिति जिसकी अपनी होगी निराकारी स्थिति, वो ही दूसरे को, हम लोग भी जब शुरू में जाते थे ना, मिलते थे बाबा ऐसे ही आता, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस बाबा हाथ बढ़ा देते और हम चुंबक की तरह बाबा की बाहों में खिंच के चले आते थे एकदम। फिर क्या होता था, चुंबक की तरह आ जाते थे, एकदम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, बस देह का बिल्कुल भान ही नहीं रहता था। फिर बाबा ऐसे कुछ में सेकंड आधा एक मिनट के बाद, हाँ बच्चे, हाँ बड़े प्यार से थपथपा के, हाँ बच्चे मीठे, ओ हम जैसे देह में आते थे, और फिर बाबा टोली खिलाते थे, कोई बात पूछनी होती थी बतानी होती थी बताते थे। इस प्रकार से ये कर्मातीत अवस्था का एक पहला मंशा से बाबा समझ जाते थे, वाणी के द्वारा उसको बताते थे, और कर्मणा में ये अनुभव कराते थे तुम विदेही हो अशरीरी हो। तो ये तीन अक्षर केवल कहे ही नहीं बाबा ने, सदा काल अनुभव साकार में भी कराया, और उसके बाद अव्यक्त रूप से भी आप लोगों ने, जब गुलजार दादी के तन में आते थे अव्यक्त बाप दादा, तो ये ही अनुभव, बस मन में कोई भी इच्छा होती थी तुरंत ही उसका समाधान उस मुरली में मिल जाता था, ऐसा तो बहुतों ने अनुभव किया हुआ ही है। तो एक तो ये रीति है। दूसरा और क्या देखा बाबा का, कि बाबा जब बाबा ने ये अवस्था, अंतिम मुरली हम बाबा के सम्मुख सुन रहे थे 18 जनवरी की रात को बैठ के, तो उस रेफरेंस से पहले एक बात बताना चाहूंगा। बाबा से जब पहली बार मिले थे ना, तो बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो हमारा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है, जैसे श्री बोलते हैं ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो श्री फर्स्ट नेम है, सिंगल सर नेम है, तो बाबा को बताया श्री, तो बाबा तो बहुत जॉली मूड वाले थे, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा, एवरीबडी यूज टू फील, हरेक ये अनुभव करता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, ये अनुभव होता था। तो बाबा ने कहा क्या बच्चे श्री, अरे तुम तो बाबा से भी आगे हो गए, अभी बाबा भी श्री नहीं लगा सकता और तुमने अपने नाम में श्री लगा दिया। तो मैं भी समझ नहीं सका, क्योंकि तब तो काफी नए नए थे कुछ महीने के, तो सब दादियां वगैरह बैठी थी, और तब बाबा ने बताया देखो बच्चे, श्री तो उन्हें कहते हैं जो हो देवी देवता, जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी ना तो किसी की आत्मा पवित्र है, ना शरीर, ना ये ब्रह्मा बाबा, ना इसकी आत्मा पवित्र है अभी और ना शरीर, तो अभी यही नहीं लगा सकता, तो इसीलिए अभी बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है, तो मोहन तुम्हारा नाम और श्री जैसा तुम्हें बनना है। तो इस तरह बाबा ने नाम भी बदल दिया, ये भी एक सौभाग्य की बात है। मोहन जैसे करा तो आप लोगों का भी सबका नाम बाबा ने बदला है, यही नहीं सोचना कि हमारा ही है। बाबा ने आप सब लोगों को भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ये भी बनाया है, और ब्रह्मचारी तो हो ही गए, पवित्र ज्ञान में आए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, अब सबको क्या बनना है, ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मचारी तो है, ब्रह्माचारी बनना है। तो ये बाबा ने जैसे हर एक बच्चे के लिए इशारा दिया, ब्रह्मा समान बनना है। तो मैं भी बाबा 18 जनवरी को यही हिस्ट्री हॉल में मुरली सुना रहे थे, हम भी सुन रहे थे मुरली, रात्रि क्लास लगभग 8:30 का समय होगा मुरली सुनाते हुए, एकाएक ही हमारे मन में विचार आया क्या कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए, और सिर्फ संकल्प ही आया, और बाबा तो कर्मातीत बन चुका था, ब्रह्मा बाबा हरेक के मन की बात को, जैसे कहते ना भक्तों की बात भगवान तक पहुंचती है, भगवान पढ़ लेते हैं और फिर उसे पूरा करते हैं, तो उस समय हमारे मन में कुछ विचार आए तो बाबा ने तक पहुंचे होंगे, और बाबा ने एकदम 18 जनवरी की मुरली में कुछ महावाक्य हमारे लिए उच्चार दिए नाम लेकर। देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत अच्छा, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और अंतक संपूर्ण जरूर बन जाएंगे, ये भी वरदान दे दिया बाबा ने। तो आज भी निंदा की और ईर्ष्या की बात थी ना, तो ये निंदा माने परचिंतन, और जो परमात जो है ना, क्योंकि ये एक ऐसा अवगुण है जो अंत समय तक हमें संपूर्ण बनने में बाधक बनता है। और कुछ नहीं, अभी हमारा यही परिवार है, बाहर का तो लौकिक परिवार निमित्त मात्र है, लेकिन यही परिवार है, लेकिन हम समय कुछ समय में ये फील करते हैं परिवार तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना जितना समय बीतता जाता है परिवार वालों से ही, दैवी परिवार वालों से ही हमारा कहीं कहीं मन भेद मतभेद और ऐसी बात होने लगती है कि कई बार ऐसा होता है कि आमने सामने भी आए ना तो भी ओम शांति नहीं होती, गुड मॉर्निंग नहीं होता, हम सोचते हैं पहले हम क्यों बोले वो बोले, वो सोचते हैं कि पहले ये बोले, तो इतना फर्क हो जाता है। अब ये संस्कार लेके तो हम सतयुग में जा नहीं सकते, सतयुग में अगर ये संस्कार होगा हमारा कि आपस में एक दूसरे के लिए कोई वैर भावना, किसी को नीचा दिखाने की भावना, या उसने मुझे नीचा दिखाया इसीलिए हम बोलना बंद कर दें, अक्सर करके कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप है कम्युनिकेशन गैप, बोलचाल बंद हो जाती है। तो इसीलिए अगर ऐसी बात है तो पहला काम हमें ये करना है, जिस भी भाई या बहन के साथ हमारे विचारों में मनभेद है मतभेद है समस्या है, उसके साथ हमारा दिल गवाही भी न दे जाए, हमारा ईगो हमें रोकेगा, अहम हमें रोकेगा, मैं क्यों बात करूं, पहले वो बात करें, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा ये संस्कार अगर रह गया तो सतयुग में तो बहुत साधारण सा पद पा लेंगे, और अंत में जाकर द्वापर के अंत में या कलयुग के शुरू में अच्छा पद मिल जाएगा। तो ये तो कोई बहुत बहुत बड़ी कॉस्ट हुई हमारे एक छोटी सी कमी से, हमें सतयुग में हम ऊंच पद से वंचित रह गए। तो इसीलिए दादी जी खास हमेशा ये कहते थे, कभी भी किसी से हो तो पहले जाके उनसे बोलो कि बहन जी या भाई जी, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे संबंध पहले जितने अच्छे थे अभी उतने सौहार्द नहीं है, अच्छे नहीं है, आइए हम थोड़ा बैठ करके ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई बात है हम उसको निकाल लें। ये पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। आप एक बार करोगे हो सकता है वो राजी ना हो, दो बार करोगे, लेकिन इस संस्कार के साथ तो हमें जाना ही नहीं है सतयुग में, तो जरूर सूनर और लेटर उस बहन या भाई से हमारा ये संस्कार में जो थोड़ी कटुता है ये खत्म हो जाएगी और हम सतयुग में एकदम ऊंच पद बिना इस कटु संस्कार के वहां पर चलेंगे और वहां जाके अपना ऊंच पद पाएंगे। तो इसीलिए एक तो ये बात करना है, कहीं भी किसी से भी बोलने की दिल ना भी हो तो भी हम जबरदस्ती बोले, हेलो बहन जी, गुड मॉर्निंग, हेलो भाई, ओम शांति, कैसे हो, दिल ना भी हो, क्योंकि अंदर में तो कोई पुरानी बात भरी हुई है कि इसकी वजह से मेरा ऊपर चढ़ना थोड़ा, आगे बढ़ना कम हो गया, लेकिन जितनी भी बात हो हम इस बात को खत्म करें। तो एक बात तो बाबा ये बताता है कि इसको करना है। दूसरा, ये तीनों बातें हैं ना, मनसा में निराकारी, और ये सब जानते हैं सहज है, जितना हम आत्मिक भाव से देखेंगे निराकारी उतना फिर वो बात जो है आत्मा, बाबा ने भी तो पहला पहला यही पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, सब मालूम है आप लोगों को, लिख लिख कर पक्का किया। तो इसी तरह हमें भी ये देखना है हर एक को कि मुझे मेरे अंदर ये बात कटुता कुछ न रहे, और क्योंकि चाहे न चाहे होगा तो हमारा यही देवी परिवार, अलग अलग नाम रूप होगा, पहचानेंगे नहीं किसी को, लेकिन होंगे यही। और अगर ये संस्कार आत्मा ले गई, आत्मा संस्कार लेके तो जाएगी ही, ये संस्कार ले गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। एक तो ये, दूसरा वर्तमान समय के मुताबिक बाबा एक बात और बोल रहा है जिसके में ये बातें आ जाती हैं, मनसा वाचा कर्मणा, वाचा में अहम निराकारी, आत्मा में निराकारी रूप में जैसे बाबा ने पक्का किया, ऐसे वाचा रूप में ना अहंकार, निरअहंकारी बाबा ने बोला, क्योंकि अक्सर हमारी वाणी से ही हमारा अहंकार प्रकट होता है। तो इसीलिए कोई भी वाणी में, कहते भी है ना कि भाई वाणी से ही महाभारत बना, रामायण बना, और हम सब जानते हैं उस इतिहास को। तो इस कारण से मनसा वाचा और कर्मणा में निर्विकारी, तो बाबा ने ये बोला ही नहीं, केवल बहुत देर तक, जैसे यहाँ संधि से उठे इस दरवाजे तक गए, बहुत देर तक बाबा दृष्टि देते रहे हर बच्चे को कि जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ये दृष्टि भी दे, और साथ ही साथ बाबा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये शब्द बाबा ने बोले, पहले कभी नहीं बोले। हम लोगों ने तो सोचा बाबा जैसे गुड नाइट करता है, अभी ये गुड नाइट का ही दूसरा शब्द है, बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, लेकिन ये कह के बाबा गए। और फिर कमरे में तो आप जानते हो दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए किस तरह बाबा ने शरीर छोड़ा। लेकिन ये ही हमें देखना है, बाबा को पूरा आभास हो गया था, इसीलिए बाबा ने लास्ट दो तीन दिन में सारे पेंडिंग काम, बचे हुए काम भी पूरे किए, और हर बच्चे से इस तरह हमें ही कई बार महसूस होता था, दो दिन थे लास्ट में, देखते थे बाबा को, अभी बाबा सुना रहे हैं, चल रहे हैं, बस चलते चलते ही जैसे ऐसा आभास होता था जैसे बाबा धरती से ऊपर चल रहे हैं। हम सोचते थे शायद कुछ नींद का या ऐसा कुछ वो है, आंखों को वो मलते थे, देखते थे हैं तो जमीन पर ही, लेकिन ऐसा हल्का रूप बाबा का होता था, फिर थोड़े समय में ये महसूस होता था, क्योंकि कर्मातीत अवस्था बाबा की जो बाबा ने अचीव कर ली थी, प्राप्त कर ली थी, वो कर्मातीत अवस्था में सबसे बड़ी बात यह है, बाबा ने बाद में भी बोला है, अभी बच्चों को कौन सा गुण विशेष चाहिए, रहम दिल हर एक के, क्यों, क्योंकि अभी अंत का अंत समय चल रहा है, हमें न चाहते हुए भी दूसरे के अवगुण दिखेंगे, 10 गुण होंगे उस गुण पर नजर नहीं जाएगी, एक छोटा मोटा अवगुण होगा एकदम देखा इनमें ये अवगुण है, ये तो 25 साल पुराने हैं, 40 साल पुराने हैं, इनमें ये अवगुण है तो मेरे में भी अगर हुआ तो क्या हुआ। तो इसीलिए अपने को चला लेने की जो बात होगी ना, तो ये हमें संकल्प रखना है, बाबा मुझे अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने संकल्प, ब्रह्माचारी तो तभी बनेंगे ना, अगर दुनिया की तरह मर गए, अभी जैसे सुन रहे हैं यहाँ बाई चांस अर्थक्वेक आए, भूचाल बहुत, ये छत गिरे और छत गिरने में कहीं हड्डी टूट जाए, कहीं पर तकलीफ हो, बहुत कुछ प्राकृतिक आपदाएं तो हम लोगों को सहनी है, बंबई वालों को जैसे पानी की ज्यादा आपदा है, ऐसे ही प्राकृतिक पांचों तत्वों की आपदाएं, इनके वशीभूत होके अगर हमने शरीर छोड़ा क्या फायदा हुआ, दुनिया ही छोड़ती है, दुख में आह कर रहे हैं, करा रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो वो अंतमते सो गति तो हुई नहीं, तो अंतमति सो गति के लिए ये आवश्यक है, एक तो सबके प्रति रहमदिली की भावना, क्षमा की भावना जो होती है, किसी का भी कोई अवगुण देखे हैं, दिखते हुए भी न दिखे, बस उसे कहें जाओ अंदर से मैंने आपको क्षमा किया और मेरी आपसे विनती है कि आप भी मुझे क्षमा कर दें, कोई कमजोरी अगर मेरे में देख रहे हैं आप भी क्षमा कर दें, मैंने भी मन से आपको क्षमा कर दिया, तो इस भाव से क्या होगा, जितना रहम दिली होगा और उससे क्या होगा, बाबा ने और बताया है इसके साथ साथ ये गुण तो होना ही चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, मतलब राइट थिंकिंग की, हमें सही चीज का भान हो, और जो शक्ति हम कहते हैं ना, दो शक्तियां कौन सी बोलते हैं हम विशेष, जो है? कौन नहीं, समझने की शक्ति से मतलब है जिसका, निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति, ये इस समय इसलिए आवश्यक है कि वैसे तो हमेशा ही आवश्यक है, क्योंकि माया अभी उस रूप में नहीं आएगी जिस रूप में आती रही है हम लोगों के पास, क्रोध के रूप में आई, लोभ के रूप में आई, अहंकार के रूप में आई, ईर्ष्या के रूप में आई, इसे तो पहचान लेंगे ये माया है, ईर्ष्या हुई, क्रोध आया एकदम, अहंकार, माया इस रूप में आएगी जो माया का रूप नहीं होगा, जो दिव्य गुण का रूप होगा, अच्छे और गलत में तो, गलत और सही में तो हम पहचान कर लेते हैं, लेकिन सही और बहुत सही उसमें पहचान करने की अब बुद्धि की आवश्यकता है, हमें ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, दोनों बातें सही लगेंगी, जैसे भक्ति मार्ग में सीता की बात कहते हैं, अहिल्या की बात कहते हैं, सब कुछ छोड़ के सीता गई लेकिन सोने के मृग को नहीं पहचान सके, लक्ष्मण की आवाज को नहीं पहचान सके, आदि आदि, तो दोनों सही लगे हैं चीज, लेकिन दोनों सही होते हुए भी जो वास्तव में सही है तभी सही चीज को पहचानेंगे और पहचान के ऑटोमेटिकली हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली हमें सोचना नहीं पड़ेगा, अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, कोई ये समस्या आई, जल की बहुत सुनामी आई, अग्नि सूर्य की बहुत गर्मी, आजकल भी इतनी गर्मी पड़ रही है, न्यूज में भी आ रही है कि यूरोप में 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और लोग जो है उतनी गर्मी गर्मी के टेम्परेचर में वहां के लोग भी अत्यधिक परेशान है। तो ये जितने भी है इस शक्ति की आवश्यकता है, और ये कब होगी इसके लिए शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति वर्तमान समय वो कौन सी है चाहिए अभी हम बच्चों को, वो शक्ति है हमारी नहीं और कौन सी, जो निर्णय शक्ति और इनसे कनेक्टेड है, हैं? नहीं, उन 8 शक्तियों में नहीं है, उसके अलावा है। हाँ, महसूसता वो ठीक है, लेकिन जो शक्ति राइट थिंकिंग, उसे हिंदी में और क्या बोलेंगे, है? नहीं नहीं, निर्णय शक्ति तो ठीक है, शब्द एकदम, मतलब जो है जिस शक्ति को है? कौन सी, नहीं, महसूस करने की शक्ति भी ठीक है, लेकिन एनी हाउ अभी शायद आ जाएगी, वो शक्ति है हम एकांत में जाके एकाग्रता की शक्ति। जब तक हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति नहीं है, न तो हमारा यथार्थ योग लगेगा, बीच बीच में बुद्धि भागेगी, और एकाग्रता के लिए बाबा ने बताया एकांत भी चाहिए, कोई यही फिजिकल एकांत नहीं, बल्कि एक की याद में अंत, एकांत होते होते एक की याद में अंत होगा, वो शरीर छोड़ने का, वो होगा अंतमति सोगति का। तो इसीलिए हम सब चाहते हैं अंतमति सोगति हो, लेकिन ये आएगी एकाग्रता की शक्ति से। तो अब हमें हर क्षण देखना है कि एकाग्रता की शक्ति मेरी कितनी बढ़ रही है। मैं आके बैठ भी जाते हूँ, सारा दिन काम धंधा किया, योग लगाने बैठे, लाल लाइट भी हो गई, म्यूजिक अच्छे गीत भी बजने लगा, बहन भी समली पर बैठ गई, दृष्टि दे रही है, लेकिन मेरी बुद्धि एकाग्र हुई, बार बार भाग जाती है, सबका अनुभव है। तो वो बुद्धि भागने का अब अंत होना चाहिए, जितने समय हम बैठे हैं बस एकाग्रता एकांत। क्यों? क्योंकि ये एकाग्रता ही अंत में हमें क्या बनाएगी, जो दृष्टि जो आवश्यकता है, साक्षी दृष्टा। अंत में बहुत कुछ होगा, बहुत शरीर छोड़ेंगे, बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन अगर एकाग्रता की शक्ति के साथ साक्षी दृष्टा नहीं हुए, साक्षी होकर देख रहे हैं, उसका असर हम पे ना पड़े। तो साक्षी दृष्टा के लिए बहुत अच्छी बात किसी ने बताई है, मुख्य 5 बातों को याद रखना है। दृष्टा, दृष्टा कौन है? आत्मा। और ये क्या है? दृष्टि। आंख देखती नहीं है, आंख के द्वारा देखने वाली आत्मा है। हम खिड़की पर खड़े हो जाते हैं, बाहर देखते हैं, तो खिड़की थोड़ी देखती है, खिड़की के थ्रू हम देखते हैं। तो एक जो है ये क्या हुई, दृष्टा, दृष्टि, और फिर क्या है, दृश्य देख रहे हैं। कार में जाते हैं, ट्रेन में जाओ, प्लेन में, दृश्य पीछे भागते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, दृश्य में हम अटकते नहीं। दृश्य भी चला गया, हम आगे बढ़ गए, दृश्य अपनी तरह आगे बढ़ गया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जीवन में कोई दृश्य आते हैं ना, हम उसमें फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। किसी कोई बीमार हुआ, कोई हमारा नियर एंड डियर, किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई घटनाएं ऐसी हो गई, तो उन दृश्यों में जहां रुके, बस दृश्य वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और फिर क्या होता है, दृश्य में क्यों अटक जाते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण जो है ना, वो पॉजिटिव नहीं रहता है सदा। तो इन सब के साथ ही साथ हमें दृष्टिकोण हमारा कैसा है, वो पॉजिटिव रहे, एटीट्यूड, और जैसा दृष्टिकोण होगा फिर वैसा ही हमारा भक्ति मार्ग में हमारे आपके सबके दृष्टांत लिखे जाएंगे। तो ये पांचों चीजें जो दृश्य से कनेक्टेड हैं, हमारे दृष्टांत तो बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए, इसका मतलब हम इतना अच्छे बने हैं, कल्प पहले भी बने हैं दृष्टांत। क्यों? क्योंकि हमने अपना दृष्टिकोण पूरा पॉजिटिव बना लिया, किसी की भी कोई निगेटिविटी हमें देखने में ही ना आए। तो ये तीनों शब्दों का ये भाव है, तो केवल मनसा वाचा कर्मणा वो ही नहीं कि मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। और ये तभी होगा ये जब ये पांचों बातें होंगी, और अंत समय में जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, दृष्टांत चाहे किसी भी वजह से, किसी कारण, प्राकृतिक आपदाओं के किसी भी कारण से छोड़े, लेकिन हमें अपनी इच्छा से शरीर, जैसे ब्रह्मा बाबा को आभास हो गया था, मैं एक घटना बताता हूँ आपको लगेगा। एक बहन है, उनका ध्यान का पार्ट बहुत बहुत क्लियर है शुरू से, तो वो बहन ने ना दिसंबर 68 के एंड में देखा लगभग कि ऐसे बाबा लेटे हुए हैं, सफेद चादर बाबा के ऊपर पड़ी हुई है और सारे भाई बहन उदास जैसे खड़े हुए, तो दृश्य से तो स्पष्ट होता है। तो वो बड़ी बेचैन, बहुत छोटी बहन थी उस समय, रोने लगी, बहुत रोते, जब बहुत बता नहीं सकी अपनी किसी और को, बाबा के पास आई साकार। बाबा को बोला, बाबा मुझे कुछ आपसे बोलना है। हाँ बच्ची बोलो एकांत में। तो बाबा मैंने ऐसा दृश्य देखा और तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, करीब 15-18 दिन पहले की बात, तो एकदम दिसंबर के एंड में। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, मुझे तो तुमने बता दिया, लेकिन ये बात अब किसी को भी नहीं बताना, ना किसी दादी को, किसी भाई को, बड़े भाई को, बहन को, किसी को भी नहीं बताना। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन वो बेचैनी की हालत में तो रही। और ये दिन कुछ खराब माने जाते हैं, 14 जनवरी तक होता है ना कोई, ये दिसंबर के 25 दिसंबर से लगभग ये 14 जनवरी तक, तो ये दिन शुभ नहीं माने जाते। तो ये वास्तव में दिन थे, ये ब्रह्मा बाबा ने ही अपने योग बल से, जैसे कि भीष्म पितामह का कहते हैं ना, तो भीष्म पितामह भी शरीर छोड़ने का सब तैयारी थी लेकिन नहीं छोड़े, वो दिन वो थे। तो ये दिन 14 जनवरी तक वो ही दिन थे। तो ये बाबा के, ब्रह्मा बाबा के, उसके बाद 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ ही दिया। तो ये जैसे कि इच्छा मृत्यु है ब्रह्मा बाबा की, और ये इच्छा मृत्यु का वरदान हम बच्चों को भी है अगर हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल पॉजिटिव रहा, ठीक रहा। बाकी दुनिया की तरह अगर शरीर छोड़ा तो क्या ब्यूटी रही, इच्छा मृत्यु से शरीर छोड़ा तो बस अंत समय जो है बस अंत मते सोगते में वो होगा, और बाबा की भी जो जो पेंडिंग काम थे वो पूरे हुए। तो ये तीनों शब्दों की और गहराई में जाके हमें समय प्रति समय, ये बाबा ने जैसे शरीर छोड़ा तो शरीर तो छोड़ दिया बाबा ने 18 जनवरी की रात को, बड़ी दीदी जिनका ये मास चल रहा है मनमोनी दीदी मामा के मास के बाद 1 जुलाई से ये है, तो बड़ी दीदी टूर पर थी। वो पहले तो इतना ये सब इंटरनेट और ये सब नहीं होता था, बहुत इन्फॉर्म करने की कोशिश करते रहे। 18 जनवरी की रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद, दोपहर तक जब दीदी पहुंचे उसके बाद बाबा का संस्कार किया गया। तो ये जो बाबा का जब संस्कार किया गया, दीदी जब पहुंचे तो उस समय तक हम तो साक्षी थे, बाई चांस यही थे, बाबा का शरीर वैसे ही एकदम सफेद, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई बाबा को इंजेक्शन नहीं लगाया गया था किसी भी रीति से ऐसा। तो ये तीनों शब्द बस हम लोगों के दिल और दिमाग में सदैव छपे रहे, और हर एक्टिविटी के समय मंशा, तभी बाबा कहता है अब ऐसा होना चाहिए कि तीनों काम आप साथ साथ करें, मंशा भी वाचा भी कर्मणा में भी, और तब ये संपूर्णता की परख है। चलिए, तो ये समय हो रहा है अभी अंत समय, बाबा की तरह हम सब भी शरीर छोड़ें, और बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो वो इसी बात का प्रतीक है, प्रकृति जीत का, मन जीते तो बनना ही है, प्रकृति जीते, ये 5 तत्वों का बना शरीर है, प्रकृति जीते जगत जीत भी बन के हम सबको वापस जाना है। तो ये बात।